आस्था और नानी माँ ने अब जो कुछ भी प्रियंका के साथ हुआ एक एक करके सारी बातें सीमा जी को बताना शुरू कर दी थी। और अब सीमा जी थोड़ा सा पैनिक होते हुए बोली थी, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमें तो लगा था कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं क्या, लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रही हैं। मेरी बेटी प्रियंका यहाँ कैसे हो सकती है? क्या आपको मेरी प्रियंका के बारे में नहीं पता? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ कहीं ना कहीं पूरी तरह से भावुक हो गई थीं। तभी रौनक और वंशिका आगे बढ़ीं और उन्होंने सीमा जी को संभाल लिया। उन्हें एक तरफ बैठाते हुए धीरे धीरे सारी बातें तसल्ली से बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि आस्था में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सारी बातें खुद बता सके। वो ज्यादा देर तक किसी भी तरह की टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए आस्था ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कमरे से बाहर जाने का फैसला किया और बाकी लड़कियों को ये जिम्मेदारी दे दी। फिलहाल जैसे ही राधिका, रौनक और वंशिका ने नानी माँ के सामने बैठकर सीमा जी को सारी बातें बतानी शुरू की, सीमा जी फूट फूट कर रोने लगी थीं। जब उन्हें पूरी बात समझ में आ गई तब उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। रोते रोते वो बार बार पूछ रही थीं, मेरी बेटी के चेहरे के साथ ये क्या हो गया, आखिर ये सब कैसे हुआ? वहीं प्रियंका भी पूरी तरह से रो रही थी, आखिर उसकी माँ उसकी आंखों के सामने थी। तभी राधिका ने हल्के से लड़कियों की ओर इशारा किया कि हमें इस पल के लिए माँ बेटी को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस हालत में अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ उसकी माँ ही है। ये सोचते हुए धीरे धीरे सभी लड़कियाँ वहाँ से बाहर निकल गईं, लेकिन नानी माँ ने जाते जाते सीमा जी के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी अपनी बेटी को संभालो, इस वक्त उसे तुम्हारे साथ और तुम्हारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जाते समय आस्था ने भी अपनी मामी को देखकर कहा, मामी जी आप प्रियंका दीदी को संभाल लीजिए, हम सब उसके साथ हैं, जिसने भी उसके साथ इतना गलत किया है हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप उसे समझाएं और संभालें, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये कहकर आस्था ने अपनी मामी के कंधों पर ये जिम्मेदारी छोड़ दी। फिर वो नानी माँ और बाकी लड़कियों को साथ लेकर नीचे हॉल में आ गई थीं। उधर कमरे में माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर काफी देर तक रोती रहीं। प्रियंका ने अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी आपबीती सुना दी थी। ये सब सुनकर सीमा जी की आंखें पूरी तरह से भर आई थीं। कहाँ तो वो अपनी बेटी के लिए दुनिया भर की खुशियां खरीद कर लाना चाहती थीं, और कहाँ उनकी बेटी की जिंदगी में अब सिर्फ दुख और दर्द ही भर गया था। चारों तरफ उन्हें सिर्फ गम ही गम दिखाई दे रहा था। रोते हुए सीमा जी बोली थीं, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हमने आस्था के साथ कितना ज्यादा गलत किया, उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, हमने उसे हमेशा ताने दिए, और उसकी माँ की भी मैंने कभी कोई कद्र नहीं की, उसकी माँ को भी मैंने हमेशा खरी खोटी ही सुनाई। शायद उसी का परिणाम है कि मेरे किए की सजा आज मेरे बच्चों को मिल रही है। ये कहते कहते सीमा जी पूरी तरह से रो पड़ी थीं। वहीं प्रियंका का भी लगभग यही हाल था, वो भी रोते हुए अपनी माँ को अपने ऊपर बीती हुई हर बात बता रही थी। दूसरी ओर जैसे ही आस्था नीचे आई और उसने अपने मामा जी को इस तरह रोते हुए देखा, वो तुरंत आगे बढ़ी और उन्हें गले से लगा लिया। नानी माँ ने भी आगे बढ़कर अपने बेटे को संभाला और उसे गले से लगाते हुए बोली, शांत हो जा बेटा, भगवान ने तुम्हारी बेटी को सलामत लौटा दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये कहते हुए उन्होंने मनोज जी को ढांढस बंधाना शुरू कर दिया था। अब मनोज जी पूरी तरह से भावुक हो चुके थे। तभी आस्था ने भी उन्हें शांत करते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मामा जी, आपको ही तो प्रियंका दीदी और मामी जी की हिम्मत बनना है, अगर आप ही टूट जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा। इसी बीच अरमान की नज़र, जो अब तक लैपटॉप पर टिकी हुई थी, अचानक आस्था पर जाकर रुक गई। जैसे ही उसने आस्था की आंखों में आंसू देखे और उसे रोते हुए देखा, पता नहीं उसे क्या हुआ, अचानक वो उठ खड़ा हुआ और सीधा मनोज जी की ओर देखते हुए बोला, मिस्टर मेहता आपकी बेटी ठीक है और सही सलामत है, इसके लिए आपको शांत होना चाहिए, इस तरह रोना धोना ठीक नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी की जान बचाकर हमने कोई गलती कर दी है तो आप चाहें तो हम उसे वापस वहीं छोड़कर भी आ सकते हैं, अगर आपको अपनी बेटी ही कबूल नहीं है तो। जैसे ही अरमान ने अचानक कड़े अंदाज में ये कहा, मनोज जी पूरी तरह से घबरा गए थे। नहीं नहीं अरमान बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, बाप का दिल है ना, बस इसलिए थोड़ा टूट गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह की बातें मत बोलो, मुझे मेरी बेटी बस सही सलामत और ठीक चाहिए, मैं अपनी बेटी को उसके नए चेहरे के साथ भी पूरे दिल से अपना लूंगा, प्लीज अरमान बेटा। ये सुनकर आस्था को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो तुरंत आगे बढ़ी और अरमान का हाथ पकड़ते हुए बोली थी, क्या कर रहे हैं अरमान जी, आप इस तरह से मामा जी को क्यों डांट रहे हैं, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए परेशान है, रो रहे हैं, उनकी बेटी पर इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप उन्हें इस तरह की बातें क्यों सुना रहे हैं। आस्था की बात सुनकर अरमान ने तुरंत उसकी आंखों में आए आंसू देखे, उसने आगे बढ़कर उसकी आंखों के आंसू साफ किए और आस्था को देखते हुए बोला, और आस्था अगर इनकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात बर्दाश्त कर लूंगा,
कभी भी नहीं। तुम्हारी आंखों में आए आंसू मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वाकई तुम्हें लगता है कि मेरी बातों से तुम्हारे मामा का दिल दुखा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर किसी से फर्क पड़ता है तो वो तुम्हारी आंखों में आए आंसू से पड़ता है। तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं होने चाहिए। ये कहकर अचानक अरमान वहां से उठकर सीधा अपने स्टडी रूम की ओर चला गया था। वहीं आस्था हैरानी से अरमान को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अरमान जी को आखिर क्या हो गया? उन्होंने इतना अजीब व्यवहार क्यों किया? कहीं ना कहीं अविनाश और बाकी सबकी नजरें आस्था और अरमान पर ही टिकी हुई थीं और अरमान का ऐसा बर्ताव सभी को परेशान कर रहा था। आस्था का दिमाग भी पूरी तरह सवालों से भर गया था। वो तुरंत अरमान से अपने सवालों का जवाब लेने के लिए स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम में जाकर अरमान ने लैपटॉप एक तरफ फेंक दिया था और अपने सिर पर हाथ रखकर अपने बालों को हल्का सा खींचते हुए इधर उधर टहलने लगा था। वो सोचने लगा था कि आखिरकार क्यों उसके आंसू देखकर इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, क्यों क्यों। ऐसा सोचते हुए अरमान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल सा होता जा रहा था। तभी आस्था गुस्से से भरी हुई वहां आई और सीधे अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अरमान को नाराजगी से देखकर बोली थी, मिस्टर सिंघानिया, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप सबके सामने मामा जी से इस तरह बातें कैसे कर सकते हैं? भले ही इस वक्त दादाजी या किसी और ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने इस तरह का व्यवहार करने की? अभी आस्था अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक अरमान आगे बढ़ा और उसने आस्था को सीधे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वो सच में थोड़ा सा सुकून चाहता हो। अरमान का ऐसा व्यवहार देखकर आस्था पूरी तरह हैरानी से भर गई। वो बोली थी, क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप बताइए ना, प्लीज बताइए क्या बात है। ये कहते हुए आस्था अरमान के सिर पर हल्के हल्के अपने हाथ फेरने लगी।
तभी अरमान ने आस्था के माथे पर एक गहरी किस कर दी। कुछ पल बाद उसने उसे थोड़ा सा अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों की प्याली में लेकर बोला, नहीं जानता, सच में नहीं जानता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन जब जब तुम्हें परेशान देखता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मानो किसी ने मेरी आत्मा को ही मेरे शरीर से निकालकर बाहर रख दिया हो। मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ खो बैठा हूँ। अरमान की इतनी टूटी हुई हालत देखकर आस्था का दिल भी भर आया था। उसने तुरंत अरमान के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप इतने परेशान मत हुआ कीजिए मिस्टर सिंघानिया, आपकी आफत इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आए और आपको हर्ट करके चला जाए। और वैसे भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो प्यार दूसरों को तकलीफ़ देने लगे वो प्यार नहीं होता। आपकी बातों से मामा जी को ज़रूर ठेस पहुँची होगी। भले ही दादाजी या बाकी सब ने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं चुप नहीं रह सकती। आस्था ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, और वैसे भी मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी से फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे पड़ता है, आपकी बातों से पड़ता है। आप मेरे लिए क्या है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात आंसुओं की, तो किसी की आंखों से निकले हुए आंसू हमेशा दुख और दर्द के नहीं होते, कभी कभी वो इंसान को समझाने के लिए भी होते हैं। इसलिए आप मुझसे वादा कीजिए कि आगे से इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करेंगे। आस्था बड़े प्यार और नरमी से अरमान को समझा रही थी। कहीं ना कहीं आस्था की बातें सुनकर अरमान के चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने झुककर आस्था के माथे को चूम लिया और बोला, मैं ध्यान रखूंगा, और हाँ, मैं तुम्हारे मामा से भी माफी मांग लूंगा। ये सुनकर आस्था सच में खुश हो गई थी, क्योंकि अरमान पहली बार खुद माफी मांगने की बात कर रहा था। फिलहाल आस्था मुस्कुराते हुए स्टडी रूम से बाहर आ गई थी। फिलहाल दूसरी ओर इसी वक्त अभिमान जी अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। उनका चेहरा दूसरी तरफ था। तभी पीछे से वसुंधरा आई और धीरे से बोली, अभिमान, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं रोकोगे, और यकीन मानो मैंने रुकने लायक कोई काम भी नहीं किया है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे एक मौका दो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा इरादा कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। फिलहाल मैं तुमसे अलविदा लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं वीर के साथ जा रही हूँ। हालांकि मेरा इस घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बिना किसी रिश्ते के मैं तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। और हाँ अभिमान, अगर तुम मुझे दिल से बुलाओगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। ये कहकर बिना रुके वसुंधरा कमरे से बाहर निकल गई थी।
वहीं अभिमान जी की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। वो मन ही मन बोले, मैं भी तुम्हें जाते हुए देखना नहीं चाहता वसुंधरा, लेकिन कैसे भूल जाऊं कि मैंने तुम्हें किसी और मर्द के साथ देखा था, ये सब कैसे भूल जाऊं। ये सोचते हुए अभिमान जी के हाथों की मुट्ठियां एक बार फिर कस गई थीं। उधर वसुंधरा भी जाते जाते एक बार उम्मीद से पीछे मुड़कर देख रही थी कि शायद अभिमान उसे रोक लेंगे, लेकिन अभिमान ने उसे रोकने की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिरकार वसुंधरा को मजबूरी में वहां से निकलना पड़ा। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने वहां मनोज जी को बैठे देखा और वो थोड़ी हैरान रह गई। तभी वीर उसके पास आया और बोला, माँ अब हमें चलना चाहिए। वसुंधरा ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा तुमने देखा नहीं, यहां मनोज जी आए हुए हैं और पूरा परिवार इस वक्त दुख में है, ऐसे वक्त में क्या उन्हें छोड़कर जाना ठीक रहेगा। तभी दादाजी वसुंधरा के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा अब हम समझ चुके हैं कि तुम सच में बदल चुकी हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी संभालनी है। परिवार में दुख सुख तो चलते ही रहते हैं और ये घर तुम्हारा भी है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहां आ सकती हो। और रही बात मनोज जी की, तो उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वो रोएंगे भी और भावुक भी होंगे, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन चिंता मत करो, ये दुख की घड़ी ज्यादा दिन की नहीं है। जैसे ही हमारे दुश्मनों का अंत होगा, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। और बेटा पता नहीं राजवीर और सम्राट से लड़ने के लिए आगे कितने आदमियों और कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम लोगों को जाकर अपना काम संभालना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम भी हमारी मदद कर सको। हालांकि सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर तरफ से अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। ये सुनते ही वीर जोश में बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और एक बार फिर से रायचंद इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने भाई के काम आ सकूं, उनका सहारा बन सकूं, उनका मजबूत बाजू बन सकूं। ये कहते हुए वीर के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ छलक रहा था। उसी समय वसुंधरा की नजर मनोज जी पर गई। मनोज जी इस वक्त एक तरफ शांत बैठे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अरमान की कड़ी बातों ने उनके दिल में हल्का सा डर भी पैदा कर दिया था, क्योंकि अरमान का कोई भरोसा नहीं था, वो प्रियंका को वापस भी छोड़कर आ सकता था, इसलिए वो थोड़ा डर से गए थे।